نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 63 آیت نمبر 105 سے 122 سورۃ نساء. لیسن نمبر 63 آیت نمبر 105 ٹو 122. آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ. ہمارا آج کا سبق جو ہے یہ رشتے ناتوں کی کیا لمٹس ہیں, رشتے داریوں کے نام پر کیا قوانین توڑے جا سکتے ہیں, کیا صرف کسی کی اس وجہ سے حمایت کی جا سکتی ہے کہ وہ میرا رشتے دار ہے, اور کیا کسی کو صرف اس وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ میرا رشتے دار نہیں ہے. ایک خاص واقعہ ہے آج کے سبق کے آغاز میں جس کو انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ, لیکن اس میں پیغام بہت بڑا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے, صرف کسی کا نام لے کر حق کے خلاف بات نہیں کرنی. اسی کے اندر ایک دوسرا بہت بڑا ٹاپک ہے, وہ کیا ہے کہ میں یشاق کے رسول, جو رسول کے راستے سے الگ ہو جائے گا, یعنی جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے انسان کی یا کسی اور کی بات کو لے لے گا, تو ایسا شخص دین اسلام کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرے گا. ہدایت ملنے کے بعد ہدایت سے بھٹکنا انسان کو کیسے کر دیتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آج کی آیتوں میں شرک کی کچھ ایسی اقسام کا تذکرہ ہے جس کو عموماً لوگ شرک نہیں سمجھتے, اور ہم سب کے عمل سے ریلیونٹ خواتین سے متعلق کچھ چیزیں, شیطان کے وہ گولز کہ جس کی بنیاد پہ وہ انسان کی تخلیق میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کہہ سکتی ہوں کہ آج کا سبق آیت میں وہ آیت آئے گی کہ جس کی بنیاد پہ عموماً پلکنگ کی بات ہوتی ہے, آرائش میں اور زیبائش میں انسان کس حد تک رہ سکتا ہے اور کس میں نہیں ہے, اس کی لمٹس کے ہیں. آئی آیتوں کو لے کر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت دے دے. سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, وہ آیت نمبر 105 سے شروع ہو کر 115 تک ہے, 105 سے 115 تک ہے. ایک خاص واقعہ تھا, واقعہ سن لیجئے بات سمجھ آ جائے گی. تفسیر طبری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس واقعے کی سند میں, اور اسی طرح یہ واقعہ ہمیں اور بھی بہت ساری باتوں سے ملتا ہے کہ جس میں ایک شخص نے چوری کی, ٹھیک ہے, چوری کرنے والا مسلمان تھا. لکھتے جائیے, بغیر لکھے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اور میں حیران ہوتی ہوں جو لوگ قلم چھوڑ کے بیچ میں تھوڑی دیر سوچنے لگ جاتے ہیں یا سنتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ ان کے نوٹس نہیں بھورے ہوں گے نا, عادت بنائے ساتھ ساتھ لکھنا تو ایسے ہے, تیزی سے چاہیے آپ کو جیسے کہ پانی بہتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ساتھ آپ انشاءاللہ عادی ہو جائیں گے تو آپ کے کان بھی اسی طرح سے سنیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. بہت سارے مختلف روایات سے کچھ نام بھی بلکہ فرق ہوتے ہیں, لیکن واقعہ کچھ اس قسم سے ہے کہ ایک شخص نے چوری کی. کیا چوری کیا؟ ایک زرہ چوری کی. زرہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی, لوگ پہن کر دشمن کی چوٹ سے بچتے تھے, قیمتی چیز تھی. اس شخص نے چوری کی. اس شخص کا نام جو روایات میں آتا ہے وہ تاما تھا, توے عین میم ہا, توما. انصاری تھا, قبیلے کا نام بنو ظفر تھا, بعض بنو بیرک کہتے ہیں بعض بنو, کہ ہم نام یاد رکھ نہیں سکیں گے اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں, لیکن پیغام بہت اہم ہے. اب کیا ہوا کہ یہ شخص منافق تھا, تھا نام سے مسلمان لیکن منافق تھا. یہ وہ شخص تھا کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں حج بھی کرتا تھا. حج سمجھتے ہیں, جیسے میرے منہ پہ تو کوئی نہ کرے لیکن میرے پیچھے بیٹھ کے میرے چنگے اتارے کہ دیکھو یہ کیسی لگ رہی ہیں, یہ کیسی بول رہی ہیں, عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے. یعنی حج کرتا تھا, آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتا تھا, اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور برائی کیا تھی کہ اپنے شعروں کو دوسروں سے منسوب کر دیتا تھا, کرتا خود تھا ایسی پیروڈی یا کہہ لیجئے کہ مزاحیہ شاعری, اور نام دوسروں کا لگاتا تھا. یہ تو بات اور بھی بہت بری ہے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہاں تک معروف ہو چکا تھا کہ جب بھی کوئی اس کا کوئی شعر آتا دوسرے کے نام سے بھی, تو لوگ سمجھ جاتے کہ اصل میں یہ شعر اس کا ہے. اب ہوا کیا کہ اس دور میں کھجور بڑی سستی تھی, بالکل سستی تھی, مدینہ میں آتی تھی, اگتی تھی, لوگ کھاتے تھے, اور یہ غریب قبیلہ تھا لہٰذا عام طور پہ یہ کھجور ہی کھاتے تھے. جب کوئی قافلہ ملک شام سے آتا تو میدہ لے کر آتا, वाइट फ्लावर, उस दौर में मैदा बड़ी नायाब चीज़ थी। खदीस के एक बयान करने वाले कहते हैं कि मेरे चचा ने मैदा ख़रीदा और बोरी और हथियार घर में कोने में रख दिए। सुबह हुई तो चचा मेरे पास आए और कहने लगे कि रात को मेरे साथ ज्यादती हो गई, और वो क्या कि हथियार और खाना पीना चोरी हो गया। यानी ये शख्स रात को आया, हथियार भी चोरी कर लिया और खाना पीना। कहते कि मैंने इसका तजस्सुस किया, खोज लगाई तो पता चला कि रात बनू बैरक के घर में आग जल रही थी। यानी चोर वहाँ से आटा चोरी करके घर ले गया और वहाँ रोटी पकने के लिए आग जली, और उस दौर में आग जलना एक बड़ी नयाब चीज़ थी। माशाल्लाह आज उनके घर आग जली, और हमारा घर कैसा होता है जिस दिन आग ना जले, वो नायाब होता है। खैर है, आज क्या बात है, कुछ नहीं पक रहा, क्या बात है। सारे बीच घर के चक्कर लगाएंगे किचन में कि क्या हो गया। खैर, कह दो कि बस बगैर चूल्हा जलाए जो है वही खा लो ठंडा गर्म। कहते हैं नहीं, ये तो नियम खा सकते। खैर, शक पड़ गया कि आज आटा भी चोरी हुआ और फलां घर में आग जल गई, तो बनू बैरक तक लोग पहुँच गए, उस कबीले तक। उन्होंने इनकार कर दिया, कहने के वल्लाही हमने ये काम नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारे ही किसी साथी का काम है। एक शख्स था लबीद बिन आसिम, उसका नाम लगा दिया, मतलब किसी और ने किया। इनको बड़ा गुस्सा आया। खैर, मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, मुकदमा चला। अब आप सोचिए कि एक शख्स जो ऐसी बातें सुनकर गर्म हो जाए, लबीद बिन आसिम जो थे वो गर्म हो गए इस बात पे कि हमने नहीं ये किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मुकदमा जब नबी सल्लम के पास गया तो इसने खूबसूरत अल्फाज में जाके अपने कबीले की बेगुनाही साबित की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, और आप साथियों को भी यही कहा करते थे कि लोगों में इंसान हो, तुम में से कोई खूबसूरत बातें करके अगर मुझे अपना हम ख्याल बना ले तो मुझे गुनाह नहीं है, गुनाह उसको है, अल्लाह के नबी उसके हम ख्याल हो गए। लेकिन मामला वो नहीं था जो होना चाहिए था। करीब था कि अल्लाह के नबी सल्लम उसके हक में फैसला दे देते। अल्लाह ताला ने ये आयत सारी की सारी जब हम पढ़ने लगे नाजिल कर दी कि नबी ऐसा ना कीजिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह ताला ने आयत क्या नाजिल की, आयत 105, इन अनज़लना इलैकल किताब बिलहक, ए नबी बेशक हमने आप पर यह किताब हक के साथ नाजिल की। क्यों की, चूमे चाटें तावीज़ बनाए? नो, लितहकुम बैनन नास, ताकि आप लोगों के बीच में फैसले करें। किस चीज़ की रोशनी में? बिमा अराकल्लाह, इसके मुताबिक जो कि अल्लाह ने आपको दिखाया है। यहाँ से आप देखिए कितनी बातें पता चलती हैं कि सबसे पहली बात तो इससे आप नोट कीजिए कि कुरान जो है सिर्फ अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसकी तफसीर भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने ये किताब जो थी सिर्फ चूमने पढ़ने के लिए नाजिल नहीं की थी, बल्कि ये कुरान लोगों के उस वक्त के डे टू डे मैटर्स का जवाब भी था। ऐसे ही जैसे आज के दौर में किसी को कोई मसला पेश आ जाता है ना, फिर वो उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद वो किसी मुफ्ती साहब को भेजते हैं, सवाल जवाब की सूरत में जवाब आ जाता है ना, तो वो लिखा हुआ उस बंदे के लिए सेटिस्फेक्शन का जरिया है। जैसे आज आप यहाँ सुन रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाद में अगर क्यू ए सेशन हो तो आपकी बातों के जवाब मैं फौरी दूंगी ना, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हमने इस सवाल का जवाब पा लिया। बिल्कुल इसी तरह से कुरान का एक बेशतर हिस्सा सहाबा कराम की तस्कीन के लिए उतरा। ये सारा मामला हो गया, नबी सल्लम का जब बात पास हुई, आपने ये सारा कुछ पकड़ के तो जिस शख्स ने चोरी की थी उसको बुला लिया। अब हुआ क्या कि उस शख्स ने चोरी भी की, उसके कबीले के लोगों को पता भी था कि ये चोरी करके आटा लाया है, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि वो हमारे ख़ानदान का है, वो हमारे कबीले का है, उन्होंने उसकी झूठी हिमायत की, जिसका पर अल्लाह ताला ने ये सारी बातें नाजिल कर दी कि तुम नबी की आंखों में धूल झोंकते हो। बीमा अराक, अल्लाह को गौर से देखो। इससे पता क्या चलता है, बीमा अराका, अराका का रूट क्या होगा भला? वही जो के रुयत का है, रुआ, हाँ पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। रुयत हलाल कमेटी कौन सी होती है? चांद देखने के लिए जो मुकर्रर की जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लम पर सिर्फ कुरान ही नहीं नाजिल करते थे, बल्कि इसकी तफसीर भी अल्लाह ही दिल में डालते थे। सूरत क़यामा में भी ये बात आती कि इन्ना अलैना जमअहू व बयाना, इस कुरान को आपके सीने में जमा करना, फिर इसका बयान करवाना हमारे ही हाथ में, ठीक है। तो गोया कि उस इल्म की रोशनी में फैसला कीजिए जो कि हमने आपको दे दी। ये छोटा सा टुकड़ा बिमा अराक अल्लाह हुज्जियत हदीस की भी दलील है। जो लोग हदीस को नहीं मानते उनको दिखाइए जाके ये आयत कि देखिए अल्लाह ना बताता नबी को और अल्लाह के हुक्म से इन आयतों की ये तफसीर ना होती तो हम और आप कभी इसको समझ ही ना पाते। तो गोया कि ये नबी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से ये कुरान नाजिल हो रहा है आपने उसी तरह मनोवअन लोगों तक पेश करना है। जैसे आप देखिए कि किसी के पास कोई ख़त आता है तो उस ख़त को मनोवअन उसी तरह उसके जिसका होता है उसको पहुँचाना होता है ना, इसी तरह नबियों ने अल्लाह के उतारे हुए कलाम में कोई तब्दीली नहीं की, कमी पेशी नहीं की। आप अपने प्यारों की तो तहरीर भी पहचान लेते हैं ना, माँ बेटे का ख़त देख के सिर्फ तहरीर से पहचान लेती है। तो ये तो इंसानी ताल्लुक है। नबियों के सीनों को अल्लाह इस तरह खोल देता है कि अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी मुराद उनको दूसरे लोगों से ज़्यादा समझ आने लगती है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तफसीर को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से बातें कर लें तो बात जो होगी वो दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब कभी हमें कुरान की कोई आयत किसी दूसरी आयत से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझ आ जाए तो उसमें फिर अपनी मर्ज़ी से अटकलें नहीं लगानी चाहिए। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है कि कुरान को अक़ल की रोशनी में समझो, कुरान को अक़वाल की रोशनी में समझो, कुरान को लोगों की बातों की रोशनी में समझो, बल्कि इससे मुराद क्या है कि अल्लाह के नबियों को अल्लाह एक फ़हम दे देता है। सूरत नजम में आप पढ़ेंगे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयूहा। ये नबी अपनी ज़ुबान से अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह के हुक्म से ही बोलता है। इसी तरह के वाक़यात अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में और भी हुए जिसमें फिर अल्लाह की रहनुमाई में लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसले लिए। एक छोटा सा फ़र्क नोट कर लें, जैसे आपको पिछले दो सबक पहले शायद बताया था कि हम जब किसी मामले में कोशिश करते हैं जिसको इज्तिहाद कहते हैं, जोहद से मेहनत करना, समझ नहीं आ रही। मिसाल है कि आप किसी नई जगह पर गए, आपको नमाज़ पढ़नी थी, कोई वहाँ का लोकल बंदा नहीं जो आपको बता सके कि आप किधर पढ़े, किबला किधर है। अब आपके पास है कोई टूल के नहीं, आप पूरी कोशिश करके सोचते हैं कि अच्छा सूरज इधर डूब रहा है, इधर होगा, चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अब आपने पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद दो में से एक ही बात होगी ना, या आपने ठीक तरफ पढ़ी या आपने गलत तरफ पढ़ी। अगर आपने ठीक तरफ पढ़ी तो हदीस में आता है कि आपको दो अजर मिलेंगे, एक कोशिश का और एक सही फैसले पे पहुंचने का, क्योंकि आपने कोशिश तो की। इसके बरक्स आप कोशिश ही ना करते, जी जिधर मुंह करके पढ़ लो, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं नहीं कोशिश करता, तो ये अजर नहीं मिलना था। दूसरी सूरत क्या है कि आपने पढ़ी लेकिन गलत तरफ पढ़ ली, तो अब गुनाह होना चाहिए? नहीं, हदीस में आता है कि एक नेकी फिर भी मिलेगी, किसकी? कोशिश की, सही तक नहीं पहुँचे। उम्मती जो होते हैं ना, जैसे हम सब हैं, हमारे लिए तो इज्तिहाद में गलती करने पे पकड़ नहीं है, लेकिन नबी के पास इज्तिहाद करने में गलती होने पे पकड़ होती है, क्योंकि नबियों के पास बराह रास्त फरिश्ता उतरता है, वही उतरती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम अपने साथियों को बहुत खोल के ये बात कहते थे। ये बात मैं क्यों इतना खोल के बयान कर रही हूँ कि आज हमारी नातें इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब कर दी जाती हैं कि मुझे यकीन है कि सहाबा की ज़िंदगी में अगर वो बातें कही जाएं तो वो उसको शिर्क कहकर और नबी की गुस्ताही समझकर वहां से उठ जाएं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। एक रिवायत में सही बुखारी और मुस्लिम की उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहती हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक झगड़ा पेश हुआ, आपने फरमाया खबरदार मैं एक बशर हूँ और बशर के सिवा कुछ नहीं हूँ और उसी के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ जो मैं सुनता हूँ। तुम में से कोई बहुत चर्ब ज़ुबान होता है, समझते हैं चर्ब ज़ुबान, बहुत अच्छी बात करके बात कर लेता है, तो मैं तो उसके हक़ में फ़ैसला कर दूंगा। यानी कोई एक अच्छा वकील है तो वो बहुत खूब बातें अच्छी करेगा, मैं फ़ैसला कर दूंगा। लेकिन याद रखो, जिसने किसी मुसलमान का हक ले लिया, हक उसका नहीं था, साबित किया है मैंने फ़ैसला दे दिया, तो समझ ले कि उसने आग का एक टुकड़ा ले लिया। अब चाहे तो इसको उठा ले, चाहे तो इसको छोड़ दे। तो क्या पता चलता है कि बस दफ़ा दो लोगों में से एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात करता है, आपके दो बच्चे हो सकते हैं, मुकदमा लेकर आगे रोता हुआ आ जाता है बच्चा, आप कहते हैं हाय बस दूसरे ने मारा होगा, छड़प से उसको थप्पड़ मारा। याद रखिए कि हज़रत यूसुफ के भाई भी रोते हुए घर गए थे और 100% झूठे थे, कभी रोते बच्चे को सच्चा ना समझे। कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कर करा के सारा काम कर रहते हैं, और पता है कि अब दूसरे फरीक ने जाके शिकायत लगानी है, ऑफ कोर्स पता है कि माँ तक बात तो जाएगी। कभी भाई बहन का मसला होता है, उस्तादों की आके बातें कर देंगे घर में, मेरी टीचर ने आज ये कहा, उसने मुझे डिटेंशन दे दी, ये दे दी। कभी अपने बच्चे की बात आंखें बंद करके ना माने। आगे इसमें हमें बराह रास्त भी आयतें मिल रही हैं इंशाल्लाह। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान होने के नाते नबी से भी लोग फैसला गलत करवा देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नबियों को महफूज रखा है गलती से, मासूम अनिल खता होते हैं। इसको इस्मत अंबिया कहते हैं, आइन स्वाद मीम ता, असम यासिमु कहते हैं बचाना। तो इस्मत क्या है? बचाओ, यानी अल्लाह ताला नबियों को गलत फैसलों से बचा लेता है। तो गोया के इससे क्या पता चलता है कि नबी से गलती कोई नहीं हुई पूरी ज़िंदगी में इस तरह की, लेकिन लोगों को और हम सब को बताया है कि ज़्यादा बातें कर करके ऐसी काम ना कर लो कि क़यामत के दिन की आग खरीद लो। मुस्तद अहमद की एक रिवायत है कि अंसार के दो अफराद में मीरास का एक झगड़ा हुआ, यानी विरासत का माल था। दोनों नबी सल्लम के पास आ गए, कोई दलील नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उनको भी यही बात कही कि लोगों में एक इंसान हूँ, हो सकता है तुम में कोई बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करे, उसके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा हो, तो मैं उसके हक में फैसला कर दूं, और अगर मैं उसके हक में फैसला कर दूं तो समझ लो कि उसने वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि आग का टुकड़ा लिया है जो क़यामत के दिन उसके पास आएगा। इस्ताम का लफ्ज़ आता है तफसीर में, आग दहकाने का टुकड़ा, यानी सिर्फ वो आग नहीं होगी बल्कि जैसे लकड़ी सुलगती है तो आग देती है, और वो क़यामत के दिन उसके पास आएगा। अब अल्लाह के नबी की ये बात सुनकर वो दोनों साहबी रोने लगे। एक कहने लगा, मैं तो भाई अपना हक छोड़ता हूँ। दूसरा भी यही कहने लगा, हक की व हक का हूँ, मुझे अपना भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, मुझे अपना नहीं चाहिए कि अगर जहन्नुम में जाना है तो जाओ, मैं इसको अपना भी हिस्सा दे देता हूँ। तो आपने कहा, अगर अब तुम दोनों यही कह रहे हो तो जाओ फिर दोनों के बीच में इसको बराबर का तकसीम कर देता हूँ ताकि इंसाफ हो। यानी एंड ऑफ द टाइम कोई भी नहीं अब लेने को चाह रहा, और थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, दोनों लेना चाह रहे थे। जिसको जहन्नुम की आग नज़र आ गई, कभी अपने भाई बहन का हिस्सा नहीं खाएगा विरासत में, कभी वो किसी शौहर और बीवी दूसरे का हक माल नहीं खाएंगे, कहाँ किसी तीसरे का करना। आज आप देखिए कि इंसानी मामलात में हम कितनी कमी बेशियाँ करते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जो शरीक लोग होते हैं लाइक मेन पार्टनर्स, ये अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियाँ करते हैं, इसलिए पार्टनरशिप पसंदीदा नहीं है। क्योंकि कुरान में आता है कि नफ्स जो है वो बखीली पर हाजिर किए गए, वो खसरत शुखा, शुख होता है नफ्स में, हर बंदा फितरी तौर पे अब फ़ायदा लेना चाहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ऐसे वक्त में जहन्नुम सामने रखी जाए तो बच्चों को भी समझ आएगा। आप माएँ हैं ना, मेरे और आपके मुकदमे को अदालतों में नहीं होते, हर जगह अदालत लग के वकील और जज नहीं होते, हमारे मुकदमे तो घरों के हैं। दिन में शायद 10-12 मुकदमे तो एक एक माँ को भुगतने पड़ते हैं, कभी एक बच्चे का, कभी बच्ची का, कभी शोहर का, कभी किसका। तो आज के सबक में आपके लिए और मेरे लिए बहुत अमली रहनुमाई है कि कभी भी किसी की बात को ऐसे ही ना करें, और इसमें एक असूल समझ लीजिए, दोनों की बात सुने बगैर कभी राय ना दें। हमें हमारी दोस्त आके सुनाती है, तो मैं क्या बताऊँ मेरे शोहर ने मेरे साथ क्या बुराई की। अब वो एक दिन भी सुनी शोहर की उसकी बुराई, दूसरे दिन भी सुनी, दिल में ग्रज बना लिया कि मेरी दोस्त के शोहर से ज़्यादा बुरा कोई नहीं। बेटी आ गई शोहर की बुराइयाँ करने, बुगस पाल लिया दामाद से, बस ये तो मिली ऐसा कि आप क्या करें, हमारी भी बेटी है, हम कोई किसी से कम नहीं, दिस एंड दैट करते कराते। कभी ऐसा ना करें, असूल बनाएं, जब तक दूसरी पार्टी का नहीं सुनूंगी तब तक बात नहीं बनेगी। मैं नहीं कुछ बोल सकती, 20 लोग अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जवाब अपने मसले इश्यूज लेके आते हैं, पूरी उनकी बात सुन के बड़ी मोहब्बत से मैं भी उनको आगे यही कहती हूँ कि देखें आपकी बात सुन के तो जो कह रही हैं वो अलग बात है, मैं तो एक जुमला नहीं बोल सकती जब तक आप मुझे आप दूसरी तरफ का भी नंबर दें। आप दे दें उनको मेरा नंबर, क्या वो भी तो अपना मसला बताएं कि आपका जिनसे इशू है वो क्या चाहते हैं। मैं कैसे आपको मजलूम समझते हुए आपको ये फैसला दे दूँ और ये कर लें, घर छोड़ जाएँ या सास से छोड़ दें, कर दें। दोनों की सुननी चाहिए फिर फ़ायदा होगा, वरना याद रखें कि बात जो है वो गलत हो जाएगी। लिहाजा इससे एक और बात भी बहुत ही खूबसूरत पता चलती है, और वो क्या कि हमारा दीन दुनिया से अलग नहीं है। हमारी इस किताब में सिर्फ दीन की बातें नहीं सिखाई हुई कि नमाज रोज़ा हज करो, दुनिया के मामले। अब आप देखिए कि ज़रा इस वाक्य को पढ़ते हुए अगर आप सुनेंगे, अभी आज तो मैं यही सारा वाक्य आएगा, इसीलिए मैं सारा इकट्ठा बता रही हूँ आपको ताकि आपका एक तसलसल बनता रहे कि ये सारी बातें जो अभी पढ़ें, चोरी की, उसके घर आटा पका, उसके रोटियाँ पकी, वो गए, क्या ये कोई दीनी इशू लग रहा है? ऐसे तो बीसियों के सैकड़ों मुकदमे एक मुल्क में रोज आते हैं, तो क्या फिर वो अदालतें जाहिलों के जिम्मे छोड़ दी जाएं? यहाँ से एक और इश्यू भी निकलता है, कि जो अदालतों में जज बना के पेश किए जाते हैं उनका आलिम होना लाजमी है। बस कहते हैं कि नहीं उनको इल्म की ज़रूरत नहीं, वो दुनियावी मामले, उन्होंने लॉ जो कर लिया तो बिठा दो। नहीं, लॉ तो कर लिया लेकिन जब ऐसे मामले आएंगे तो फिर लॉ कहाँ से उनका काम आएगा अगर उनके पास दीन की समझ बूझ नहीं है। तो दीन के मामलात की तरह दुनियावी मामलों में भी कुरान और हदीस को टटोलना चाहिए। उस किस्म का वाकया अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में या सहाबा की ज़िंदगी में हुआ, जो फैसला उनका था वही हमारा होना चाहिए। निसाई की एक रिवायत है, हम पढ़ेंगे आगे भी, कुरान में ये आयतों में इशारा भी मिलता है कि दो औरतें हज़रत सुलेमान के पास आईं, एक बच्चा था, दोनों औरतें ये तकाजा कर रही थी कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहने लगी मेरा बच्चा है। अब आप सोचिए ज़रा, जब ये मामला हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों के, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने बहुत फहम दिया था, अपने बच्चों के लिए मांगा करें, बल्कि इमाम इब्ने तैमिया एक दुआ भी किया करते थे कि या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी, ए इब्राहीम को इल्म देने वाले सिखाने वाले मुझे भी सिखा, या मुफहिम सुलेमान फहमनी, और ए सुलेमान को फहम देने वाले मुझे भी फहम दे। दाऊद बाप थे, सुलेमान बेटे थे, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैंने बेटे को दिया फहम। कोई ज़रूरी नहीं कि बाप ज़्यादा अक्लमंद है बेटा कम है, बस वह उस्ताद से शागिर्द आगे निकल जाते हैं। तो मत सोचिए कि आपके बच्चे आपसे बेवकूफ़ होंगे, वो आपसे अक्लमंद भी होंगे। तो हज़रत सुलेमान ने उस मुकदमे का फ़ैसला क्या किया, कहने के अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे के दो धड़ कर देता हूँ, आधा बच्चा तुम ले लो आधा दूसरा तुम ले लो। एक औरत इस फैसले को सुन के कुछ ना बोली, दूसरी बोली नहीं 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 अल्लाह के नबी, आप बच्चा उसको दे दो, आप उसको ही दे दो, कोई बात नहीं है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा बस इधर आ जा, ए औरत ये बच्चा तेरा है, तू माँ है ना, तो इस बच्चे का आधा धड़ होना कबूल नहीं कर सकी, और ये दूसरी चूंकि औरत माँ नहीं थी तो उसको क्या होगा, तो फैसला हो गया। ये फहम होता है, कभी आप सीख के देखें कुरान सुन्नत कैसे हिकमतें सिखा देता है कि इंसान को इंसान होना भी आता है और दूसरी बात भी समझ आ जाती है। तो अब आइए ज़रा दोबारा आयत के ऊपर, और इसमें अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया वो क्या, वला तकुल्लिल खाइनीन खसीमा, हाँ आप खयानत करने वालों के हमायती ना बने। खाइनीन खाइन की जमा, खाइन कौन होता है, खयानत करने वाला, अमीन का अपोजिट, अमीन कौन है, अमानत निभाने वाला, खाइन कौन है, खयानत करने वाला, और खसीमा खसम से, खा स्वाद मीम, यानी आप झगड़ा करने वाले की तरफ से हिमायतें ना करिए। किसको कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि देखिए आप इनकी बातों में आकर इधर की बात उधर और उधर की ना करें, और दिस एंड दैट ये ना कीजिए, जिसने जो किया है आप उसकी साइड ही ना लें बल्कि दूसरे के पर लें। और जो आपके दिल में हल्का सा ख्याल आ गया था ना, तो वस्तग़फिरिल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, आयत 106 है, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। किस बात की बख्शिश मांगो, कि ये जो दिल में गुमान भी आ गया था कि शायद उस शख्स ने चोरी कर ली है या नहीं की, यानी नबी से और हम सब से यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तकाजा है कि जब तुम अपने नफ्स के मेलान की वजह से किसी की गलत हिमायत कर दो या गलत फैसला करने के करीब ही क्यों नहीं पहुँच चुके, तो मगफरत तलब करो, बग़ैर तहकीक किए खयानत करने वालों का साथ देने पर बख्शिश तलब करो। जब तक यकीन न हो जाए कि दोनों फरीक में से किसकी बात सच है, दूसरे का साथ न दो, और अगर दिल में कोई बात आ गई तो जाके फिर तुम उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। सवाल पैदा होता है कि एक इंसान माफ़ी क्यों मांगे, तो आप देखिए कि माफ़ी मांगने से दिल का बोझ दूर हो जाता है, कन्फेस कर लेता है ना इंसान कि अल्लाह ये मैंने क्या किया। आप लोगों ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अल्फाज पर गौर कभी किया होगा, हर फजर और मगरिब के बाद आप सब पढ़ते होंगे, जिसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, तो उसमें क्या आता है, अबू लक बिज़म्बी इलैक, ए अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूँ उस गुनाहों का जो मैंने किया। तो ये एतराफ़ कब होता है, जब बंदे को अपना गलत होना समझ आता है। इस वाक्य से आपको मुझे एक और बहुत ही बड़ी बात समझ आ रही है कि अपनी गलतियों को मानना सीखो, डोंट आर्ग्यू। आज जो चीज़ हमें कल्चर में दिखती है आम, वो क्या है कि अपनी गलती नहीं को मानना चाहता, गलत से गलत बात करने वाला भी कह रहा होता है कि आई एम राइट, और दूसरी तरफ भी यही है। आप देखिए कि एक वो दौर होता था, आज भी होगा यकीनन, हर जगह नहीं, हर तरह के लोग हर दौर में ही होते हैं, लेकिन एक अमूमी रंग हर जगह दिखता है कि पहले दौर में जब माँ बच्चे का मामला आता था या बड़े छोटे का, तो जिसने इवन गुनाह किया भी होता था तो दूसरे लोग उसको क्या कहते थे, अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं माफी मांग लो, चलो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते, अच्छा तुम उसको माफ कर दो, ये होता था ना। कभी भी पूरी बात माँ ने बच्चे से सुनी नहीं होती थी, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा उसने फिर क्या, फिर तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। और बाद में फिर माएँ ये नहीं कहती थी कि मेरा बच्चा तो कभी झूठ ही नहीं बोल सकता। आज के दौर में एक बहुत बड़ा तरबियत का नक्स क्या हो गया कि माएँ अपने बच्चों पे अंधा एतमाद करने लगी। यकीन करें, दोस्तों के मामले में दोस्त हैं, आप देखिए कि बच्चा घर आया, देखा कापी फटी हुई थी, वो मेरे दोस्त ने फाड़ दी थी, पेंसिल किधर गई, फुलाने ले ली थी, ये क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों पे इंक्यू लगी है, फलान दोस्त ने लगा दी, मान लिया, कहते मेरा बच्चा झूठी नहीं बोलता। और इसमें बाज़ दफ़ा उनका नफ्स इतना मोटा हो जाता है कि उनको आदत ही नहीं रहती इस बात को सुनने की कि मेरी भी कोई गलती होगी। अल्लाह ताला जहाँ वस्तग़फ़िर कहकर और इस तरह के अहकाम नबी को दे के हम सबको सिखा रहा है कि अपनी गलती मानना सीखो। और गलती कौन मानता है, जिसका नफ्स टूटा होता है, जो खुद को बहुत छोटा, इन्नी असगर इन्नी असगर इन्नी असगर। हाँ भाई, गलतियों का पुतला हूँ, इंसान हूँ, निस्यान से हूँ, तो मैं इस तरह के काम क्यों ना करूँ, मैं गलती मानता हूँ। लेकिन जब इंसान बचपन से ही बच्चे के नफ्स को मोटा कर दे, तुम ठीक, तुम अच्छे, तुम्हारा राइट, जो तुमको वही होगा, जो तुमको वही करेंगे, तुम्हारी बात ठीक, तो उनको लगेगा कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते। और आप देखेंगे पूरे यकीन से गलती करने वाला कह रहा होता है कि मैंने गलती नहीं की, मैं नहीं करता। तो यहाँ से ये एक साइड का इशू भी नोट किया हमने कि गलती करने वाले को एहसास दिलाना चाहिए कि तुमने ये गलती की है। हत्ता के नबी सल्लम की बात जहाँ हो रही है, अब ये बात तो हो गई, अल्लाह ताला के नबी को भी सिखा दिया, अपने लिए भी बख्शिश मांगो उनके लिए भी।